نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد محترم قبلہ امام صاحب نے بہت ہی مفید گفتگو فرمائی ہے اور الحمدللہ چند الفاظوں میں اور مختصر وقت میں انہیں پورے تصوف کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں. اس مسجد پہ تو پہلے میرا نہیں آنا ہوا لیکن دوسری مساجد میں کبھی وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہتی ہے. تو سیدھی بات تو یہ ہے دوستوں کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو مقصد اس سفر کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی تقریر اور قواعد کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی مساجد میں ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء کرام اور اچھے اچھے حضرات تشریف لاتے ہوں گے. میرا تو ایک مقصد تھا جس کے تحت میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں, تو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. میری حاضری کا مقصد یہ تھا کہ میں اس شوق ذوق اور اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جنہیں میں نہ جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہوں ان کے پاس جاؤں, ان کے ساتھ بیٹھوں اور ہم سب مل کے اللہ کو یاد کریں. یہ میرا مقصد تھا آنے کا. الحمدللہ وہ کہ آج چھٹی کا دن ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, نفس کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتا ہے, بڑے بڑے پروگرام اس وقت چل رہے ہوں گے. تو مجھ میں یہ جو ایک سوچ آئی, میں بھی انہیں میں سے ہوں, آسمان سے ٹپکا تو نہیں, کہ بھئی چھٹی کے دن ہے, چلو کھانے وانے بناتے ہیں, رشتے داروں سے ملتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہزاروں چیزیں ہزاروں باتیں بنتی ہیں انسان کے ذہن میں. لیکن میرے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی نہیں, چلتے ہیں کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت ذکر ہی کرنا تھا تو گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں, وہاں بھی تو سواب ملتا ہے, تنہائی بیٹھ جاتے اپنا ذکر کر لیتے مراقبہ کر لیتے. یہ کیوں آپ نے کہا کہ بھائی چلیں وقت کے سوتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چلیں؟ اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے. بھائی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے اس کی بہت فضیلت دیکھی, اس کا بہت ثواب دیکھا, آخرت کے حساب سے بہت ثواب ہے اس کا کہ بھائی چند لوگ اس پر سفر بھی کیا جائے اور چند لوگ بیٹھیں جمع ہوں, اور جمع ہو کے ایسے لوگ کہ نہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں, مختلف زمانے کے ہوں, مختلف قبیلوں کے ہوں, جیسے حدیث کے الفاظ ہیں ایسے. تو جب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مجموع میں تو وہاں تو رنگ بدل جاتے ہیں. ایک تو بہت بڑا ثواب ہے اس کی, بہت بڑی افضلیت ہے اس کی. تو یہ جب میں نے اس کی دیکھی تو میں کہا بھائی یہ تو چلنا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو ساری چیزیں ایسے آپ نوٹ کریں تو وہ تو بالکل فانی چیزیں تھیں, لیکن اس کا تعلق آخرت سے تھا. تو میں نے اس کا انتخاب کیا کہ بھائی اس چیز کو لیا جائے, یہ سب سے بہتر چیز ہے, اتنا ثواب ہے آخرت کا. اب یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے, مولانا نے خواب اس کو ظاہر تو کیا, آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مجھ میں یہ سوچ کیوں آ گئی اس زمانے کے اندر, میں نے اس وقت دنیا کے کوئی اور کام کیوں نہ کیے, اپنے نفس کو راضی کیوں نہیں کیا اور طریقے سے اپنے اس وقت کو کیوں نہیں گزارا, اتنی دور آنے کا مقصد کیا ہو کہ میں ایک ثواب کے خاطر اتنا لمبا سفر کیا اور اتنی دور آ گیا؟ وجہ اس کی ایک ہی تھی دوستو, کہ سوچ بدل گئی تھی, سوچ بدل گئی تھی میری, اور سوچ نے سارا یہ کام کیا, رخ بدل گیا سوچ کا. وہ کیسے بدلا؟ یہ خود نہیں بدلتا, بلکہ ہوا ایسے کہ میری بھی یہ سوچ تھی, میں بھی یہی کرتا تھا, سب کام ایسے ہوتے تھے, دنیا کی طرف دیکھتے تھے, دنیا کی ترقی کو دیکھتے تھے, دنیا کی طرف ہو جاتی تھی, اور آخرت کا ثواب تھا ہی نہیں اس کے مقابلے میں. کچھ آدمی اس کے مقابلے میں دنیا کو بڑھانا بہت بڑی چیز تھی. تو بس ایک ہوا ایسا کہ ایک نیک صالح متبع سنت متبع شریعت, جس کو ہم عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں, ان کی صحبت نصیب ہو گئی, جیسے حضرت نے فرمایا. اور ان سے جو دوستی ہوئی الحمدللہ, تو اس دوستی کا رنگ ایسے جڑا کہ میری سوچ ہی بدل گئی, زہر پیشے کے بدلنے کے اندر سوچ ہی بدل گئی, رنگ ہی بدل گیا, اور اب یہ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں وہ کمتر ہو گئیں, اور آخرت کا تھوڑا بھی ثواب جہاں ہوتا ہے آدمی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے, دوڑ لگانا شروع کر دی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ آدمی کی آنکھوں سے اتر جاتا ہے اس چیز سے, اور یہ کسی چیز سے نہیں اترتا دوستو. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اس لیے اپنی مثال آپ کو دی کہ وہ تو ظاہر ہے کتابوں میں بہت باتیں لکھی ہیں, لیکن جو آپ بیتی ہوتی ہیں آدمی کی, وہ زیادہ سمجھ آتی بات کہ بھائی آدمی خود اپنی قصے سنا رہا ہے. تو جب کسی اللہ والے کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے الحمدللہ, تو اس پہ یہی رنگ چڑھتا ہے کہ وہ دنیا اس کے لیے کمتر ہو جاتی ہے, اور جو کہ پورا قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے, صحابہ کرام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں, جس کو مرے گدے سے پتھر کہا گیا ہو, مچھر کے پر سے بھی قیمتی اس کے کچھ نہ ہو, اور ہم اس دنیا کے خاطر کتنے بڑے بڑے ثواب چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ دیں کہ جب یہ ثواب ایک مجمع میں بیٹھ جائے آدمی, جیسے اب آپ بیٹھے ہیں, اس مجمع میں بیٹھ کے آدمی اللہ کا ذکر کرے, اب قیمت دیکھیں اس کی کتنی گریٹ ہے, کیا دیتے ہیں اللہ پاک اس چیز میں. آپ سوچیں ساری دنیایں رکھ دیں, آپ سلطنتیں رکھ دیں, بادشاہتیں رکھ دیں, خدا کی قسم چند گھڑی کی جو اجتماع ہے اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں بتاتا ہوں, حدیث بہت حدیث ہیں, شیخ حدیث نے اپنے اس میں لکھے, حضرت پڑھتے ہوں گے آپ, ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سعید, دو بہت بڑے صحابی ہیں, اور عجیب طریقے سے حدیث کو پیش کر رہے ہیں, وہ عجیب طریقے سے حدیث آپ نے پیش کی, روایت فرمائی. سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی, سبحان اللہ, دو صحابہ اتنے بڑے حدیث سنا دیتے, قولی سنا دیتے نہیں, میں ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, یہ فرماتے سنا. کتنا زور ہو گیا اس بات میں آپ یہ دیکھیں. تو اگر کسی کی سوچ آخرت کے بارے میں ہو تو وہ چھوڑے گا اس کی کمائی کو, مجھے بتائیں, وہ چھوڑے گا, اس کو سوال ہی پیدا نہیں تھا, اس پتہ ہے تھوڑی دیر میں موت میری آنے والی ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ جو چیز ہے تو بڑی ہی قیمتی چیز مل رہی ہے آخرت کی. پھر ہم نے خود سنا, صحابی کہتے ہیں, آپ سرکار دوست نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, جس کو مجمع کہتے ہیں, جماعت کہتے ہیں, اجتماع کہتے ہیں, اور وہ سب اکٹھے ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہوتا وہاں کیا ہے, جب ذکر کرتے ہیں وہ جماعت, تو سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبرین فرشتے ملین کے حساب سے, ٹریلین کے حساب سے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اب کہا کس نے, صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اشارت سے بات ہو رہی ہے, تو یہ غلط ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں, یہ نفس کا دھوکہ ہے جس ہمیں چلنے نہیں دے رہا کہ ہماری صحبت نہیں نا کسی سے, یہ تو آنکھیں دیکھنے سے بھی زیادہ مستند بات ہے جو ہے. تو گویا اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو پہلا کام کیا ہو رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے, اور فرشتوں کا گھیرنا کیا ہوتا ہے اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے, اللہ کے نزدیک رہنے والی مخلوق ہے, تو وہ جب گھیر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمام مصائب پریشانیوں مصیبتوں سے ان کی حفاظت کر لی ہے. دس سوچیں اس سے پہلے ہمارا کیا حال تھا, اس مجمع میں آنے سے پہلے میرا کیا حال تھا, آپ کا کیا حال تھا, سوچیں. کتنے کتنے شیطان مصیبتیں, جن پریشانیاں, جادو, پتہ کیا کچھ ہوگا, لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جیسے اس مجمع میں ہم بیٹھے, اللہ نے فضل کیا, اللہ نے بٹھایا بغیر احساس کے. ایک تو احساس سے ہوتا ہے نا کہ آدمی کمانے جاتا ہے, جیسے میں چلا ہوں اتنی دور سے چلتا ہوں, نہ سردی دیکھی, نہ بچے دیکھے, نہ بیوی دیکھی, نہ کچھ دیکھا, باغر چلا رہا ہوں اس طرف. کیوں؟ کہ حدیث ہے, بھاگوں جیسے اس کو چھوڑ دوں کل موت میرے سامنے کھڑی ہے, اتنا بڑا چانس چھوڑ دوں. کیوں؟ کہ میرے پاس صحت ہے اس وقت, الحمدللہ تگڑا آدمی ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, اب کھاتا بھی ہوں, ناشتہ بھی کیا ہے, اب جا کے بھی کھائیں گے, اللہ نعمتیں دے رہا ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, ہر کچھ ہے. تو اتنے ہونے کے باوجود اس کا شکر کیا ہے کہ میں کپڑے ماروں, مزے کروں, وہ چیزیں کروں جو اللہ کو ناپسند ہیں, وقت جا رہا ہے اس میں اپنی زندگی کو گزاروں, فضول باتیں کروں, زبان سے بھی غلط بات, نگاہوں سے بھی غلط بات, جسم سے بھی غلط بات, کوئی کام نہیں آتا, کوئی دوستی کام نہیں آتی. یہی وقت, تو جب یہ یقین ہو گیا تو میری سوچ بدل گئی, تو اسی وقت الحمدللہ کرنٹ لگا کہ نہیں بھائی چلو سفر کرو, اس سفر کے ہر قدم پہ تمہیں بہت انعام ملے گا. بھاگا میرے بھائی, یہ یاد رکھنا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اپنی سوچوں کو بدل لے. جہاں دنیا مل رہی ہو اور اس کے مقابلے میں آخرت مل رہی ہو, خدا کی قسم ایک دم قربان کر دینا اس کو, ایک دم. ہونا کل کیا ہوگا, بہت بڑا پچھتاوا ہوگا, یار کیا ہوا, چند گنتی کے سانس ہیں ہمارے پاس, کوئی ذخیرہ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی, آپ ٹیلی فون میں بیٹری ڈالتے ہیں نا, تو کھلی تو نہیں ہے نا, خرچ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, وہ آپ کو بیٹری کی لائن بتا رہی ہے گئی 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 گئی. اسی طرح ہمارے سانس جو نکل رہے ہیں نا, وہ ہم بتا رہے ہیں گیا گیا, کوئی ایسا نہیں کہ وہ سانس دوبارہ آ رہا ہے, نہیں پروڈکشن آ رہی ہے, گیا جو گیا ہو گیا. جو اس سورج آپ نے آج دیکھا ہے کل تک ختم, وہ سورج وہ گیا, یہ وقت گیا, یہ ظہر گئی, یہ عصر گئی, یہ بیٹھنا گیا, سلا گیا, یہ بھی گیا, ہماری زندگی سے ختم ہو گیا, اور اس میں سے ایک کمی ہو گئی ہماری, بہت زبردست ڈیفیسٹ ہو گیا ہماری زندگی کے اندر. تو ہم یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا, اللہ کو کتنی قیمتی چیز تھی, آپ دیکھیں کیا کیا, اس کا حشر کیا کیا اس ٹائم کا. تو ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا وقت آ جائے, ایسا موقع آ جائے زندگی میں, غور کریں کہ جس پہ آپ دنیا لے رہے ہیں اس میں, وہ دنیا فانی ہے, کچھ نہیں دے گی آپ کو. بے شک آپ کو 10,000 پاؤنڈ مل رہے ہیں اس وقت, اور ادھر اذان ہو رہی ہے, حی الصلاۃ, تھوک دیں اس کو, پھینک دیں اس کو, بند کر دیں دکان, تصور ہی نہ کریں کہ آپ کو کچھ اس سے کچھ حاصل ہوگا. 10,000 کیا 10,00,000 پاؤنڈ مل رہے ہوں, بھاگتے چلے جائیں. کیوں؟ کہ رب بلا رہا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جو رب دے گا وہ قیمتی چیز ہوگی, یا گاہک دے گا وہ قیمتی چیز ہوگی, مجھے بتائیں. کتنے کمزور ہو گئے ہوں, مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. فرض کریں 10,000 پاؤنڈ کے لیے میں کھڑا ہو گیا, ادھر مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ آؤ آؤ آؤ, بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے مؤذن. اتنا بڑا حشر کے اندر آخرت میں مؤذن کا انعام ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا دیکھے گی اس کی گردن سب سے اونچے ہوگی, کیونکہ اللہ کا داعی ہے وہ, وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ تقسیم ہو رہی ہے اللہ کی رحمتیں. وہاں گاہک پیسہ نہیں دے رہا, پیسہ مسجد میں مل رہا ہے اس وقت. آپ ڈاکٹر صحت آپ کو نہیں دے رہا, صحت مسجد میں مل رہی ہے اس وقت. آپ جو دنیا میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں آپ ہر چیز, وہ اس وقت یہاں اللہ پاک دے رہا ہے, تمہیں بلا رہا ہے. سبحان اللہ, سحر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے, اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور آواز مارے آؤ لوگوں آؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ سوئے پڑے رہتے ہیں. کتنا کنٹراسٹ ہے ہماری ایمان ہماری زندگی کے اندر. دوست ذرا سوچو, یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ضائع کرے گا آدمی؟ اس سے بڑا کوئی ڈیفیسٹ ہوگا؟ اور کب ہوش آئے گا ہمیں, کب عقل آئے گی؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا ہماری زندگی سے, ہزاروں بیماری لگ چکی ہوں گی, اس وقت اللہ خواہش پیدا کر دیتے ہیں انسان کے اندر, یار میں بھی ہوں جاتا, میں بھی مسجد سے بیٹھا, یار میں بھی جانتا. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا, میری زندگی میں واقعات ایک نہیں کہی, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ 4-8 گھنٹے کی زندگی ہے یا 1-2 گھنٹے کی زندگی ہے. میں اس شخص کے پاس گیا, بڑا گروم آدمی تھا, بڑا امیر آدمی تھا, کبیر, بڑے اس کے ویئر ہاؤس تھے, بہت کبیر امیر آدمی تھا. میں اس کو اکثر دعوت دیتا تھا اپنی خانقاہ میں, ذکر میں ہیں چودھری صاحب آؤں گے جی سر, ٹائم نہیں ملتا نا, کرسمس چل رہی ہے, وہ چل رہا تھا, فلاں چل رہا ہے, بڑے بیزی ہیں فاروقی صاحب, آؤں گے جی کوشش کریں گے. لیکن میں اس کو کہتا رہتا تھا اب وقت آیا, میں اس کے پاس گیا, سلام کیا, اب وہ رو رہے ہیں, حضرت صاحب میں جی فرماؤں, میں جی وعدہ کرنا تو اللہ میرا سے دعا کر دے, पंजाबी समझते हैं ना, मेरे वास्ते तुसी दुआ कर दो। मैं की दुआ करूं, मैंने से तुझे मैं कसम खा कर जिथे मैं सब तो पहले तुहाडी खानगाह आऊंगा तो मैं जिक्र कराऊंगा। हाय हाय, मैं क्या बच्चे मुझे रोना आ गया। मैं लगा कि जैसे मैं वहां लेटा हूं और कोई मुझे समझा रहा है। मेरी जिंदगी में अंदर से हिल गया, वजूद हिल गया मेरा, हिचकियां लगी मुझे उसको देखकर कि कितना मजबूर हो जाता है आदमी। इसको पता है 8 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद समझ जाना इस शख्स ने। और मैं इसके पास 23 सालों से जाता था तो मैं समझाता था जिक्र बहुत बड़ी चीज है। उसके लफ्ज थे कि इस वक्त दुनिया की कोई चीज मुझे पसंद नहीं हो रही, कोई चीज मुझे नफरत हो गई हर चीज से। अब मैं उसके सामने बातें करता पौंडों की, फैक्ट्रीज की, कारोबारों की, मुझे बताओ उसको क्या मिलता। आप इसकी सोचते हैं कि हम वो हैं और वो है जो मैं उसके सामने बैठा हूं, वो है और मैं वो हूं। मुझे बताएं कितना फर्क हो जाएगा जिंदगी में। आज आपका ये बैठना, अल्लाह की रहमतों को उतरना, आपके लिए इनामात का उतरना, आप पे फजल उतरना, और जो इनाम इस वक्त अल्लाह पाक आपको दे रहा है सुनने जरा। पहला इनाम क्या कहा, फरिश्तों ने आपको घेर लिया है। ये कोई मुझे बताएं कि दुनिया के कौन आपको बादशाह से कोई इनाम दे दे कि फरिश्ते आपको घेर ले, यानी आपकी हिफाजत करने वाला गार्ड ना हो, पुलिस ना हो, आर्मी ना हो, ये क्या उसके आगे फरिश्ते की हिफाजत और फरिश्तों की हिफाजत और फिर मिलियन ट्रिलियन फरिश्तों की हिफाजत। यहां एक अजीब आपको नुकता बनाऊं, दरवेशी वाला नुकता बताता हूं फकीराना, कि जिन फरिश्तों ने आपको घेरा हुआ है ये दोस्ती पक्की हो गई है आपके साथ। वो आपके नाम से पहचानते हैं, आपके अब्ज को पहचानते हैं, आपके नस्लों को पहचानते हैं, उनसे पूरा आपसे ताल्लुक हो गया। और ये ताल्लुक किस वक्त काम आएगा, जब हशर के मैदान में आप खड़े होंगे और आप इधर तो देख रहे होंगे तो यही मिलियन फरिश्ते देंगे अल्लाह ताला हम गवाही देते हैं कि फला मस्जिद में शख्स ने आपका जिक्र किया था। बोले सुबह सौदा कम हुआ, महंगा हुआ, सौदा कम है मुझे बताया। इसके आगे आप दुकान पे खड़े होते, जो शख्स दुकान पे खड़ा है और आने पहुंचा कि कोई शख्स आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है और आके आपको अल्लाह का जिक्र कराएगा, चलो जी आज इसमें न्यू ईयर के चलते हैं उधर जाए, घड़ी लिए हॉलीडे बुक करा रहा है, कोई कुछ आ रहा है, इतनी हॉलीडे बुक होती है इसमें, पता है आप वाहिद एक तबलीगी जमात है बेचारी की जिनकी हॉलीडे कहाँ बुक होती है, मस्जिदों के अंदर होती है। सुभान अल्लाह, देखिए ना ये रुख बदले हैं। एक दरवेश उठा था इंडिया से, इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का एक बंदा उठा था जिसको बोलना भी सही था, रुकना थी उनकी जबान के अंदर, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा काम ले लिया कि ये लुकनत है, ये जबान, ये कुछ नहीं चलता। चलता वो है जो मैं चलाता हूं, जिसको तेरा अखलास है, तेरी नियत है, तो तेरी दुनिया में तेरा काम पहल फैल जाएगा। इससे मुंशी से अभी तो इंसान थे मेरे भाई, हो फरिश्ते या क्या बनेंगे, गवाह बन गए आपके मेरे। सुभान अल्लाह, आप देखें कि हम आप कितनी कीमती चीजें बन गई हैं, उस तरफ देखेंगे जो मिलियन कमा रहे हैं। खुदा अब सोच बदल गई है तो आपको वो इतने घिनौने लगते हैं, बदबूदार चीज बन गई वो, जैसे कि हदीस के अंदर आता है। आपको भी दिल नहीं करेगा आप उन पैसे गिनने का, आपका बेटा लेके भी आएगा कहता काश कि इस मस्जिद में बैठा होता, क्या करूं मैं इस पैसे का, क्या करेगा तू इस पैसे का। दूसरी चीज क्या, दूसरा नाम किया क्या है हमने, कुछ भी नहीं, वो भी बड़ी बात की है, सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह को अपने नाम से कितना प्यार है आप सोचें जरा। अल्लाह कहते हैं दूसरा नाम यह है कि मेरी रहमत उसको ढांप लेती है। सुभान अल्लाह, फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत अल्लाह की। अब रहमत का आप करें इसकी तफसीर करें, रहमत क्या चीज है, कोई दुनिया की एक चीज भी ऐसी है जो बजुस अल्लाह की रहमत के कायम है, मुझे बताएं एक चीज कोई हंसी दिखा दे मुझे कि जो अल्लाह की रहमत के बगैर कायम हो। अल्लाह की रहमत के तो बगैर आदमी को जन्नत में नहीं जा सके, सब जाएंगे तो उसकी रहमत से जाएंगे, उसके फजल से जाएंगे। तो इतनी बड़ी कीमती चीज अल्लाह ने पहले घेरा दिया फरिश्तों का और उसके बाद ढक्कन कौन सा लगा दिया, अपनी रहमत का। सुभान अल्लाह, बोल रहे किसको मिल रहा है, मुझे और आपको चीज मिल रही है क्योंकि अल्लाह के जिक्र में आया। मुझे बताएं मेरा आना कैसा सहर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सफर करना कितना कीमती हो गया, आपका बैठना कितना प्यारा हो गया, आपको मेरा मेहमान बनाना कितना कीमती हो गया। एक एक चीज सुभान अल्लाह, वो मीजान पे जब रखी जाएगी आज की इस
न्यू ईयर के अंदर जो दुनिया मना रही है, ये हमारा न्यू ईयर मनाना है। सुभान अल्लाह, कैसे खूबसूरत हसीन तरीके से हम इस्तकबाल कर रहे हैं एक नए साल का। ये है तरीका। आने वाला साल खुदा की कसम, आने वाला साल गवाही देगा इसने मुझे शुरू ही ऐसे किया था कि इसमें अल्लाह का नाम आता था। कदर करो, दूसरा नाम, तीसरा नाम, इसकी तफसीर ही कोई नहीं मिलती इस चीज की। अब पहले घेरा दिया, ढक्कन लगाया, उसके बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह ने एक इनाम अता फरमाया इस मजमे पर। वो इनाम क्या है? अल्लाह कहते हैं मैं उसके अंदर सकीना उतारता हूं। ये खालिस, ये उस वक्त की बात है, जन्नत में नसीब होगा इंसान को सकीना क्या चीज होती है। सुभान अल्लाह, सकीना नाजिल फरमा रहे हैं इस वक्त हमारे कलूब के अंदर, हमारे जिस्मों के अंदर। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने अता फरमा रहे हैं। अल्लाह जो इनाम देते हैं कभी वापिस लेते नहीं इंसान से, कभी वापस नहीं देते। इसके रंग देखेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के अंदर, समझने के। पता नहीं जिंदगी हो फिर मुलाकात हमारी ना हो, लेकिन एक एक जगह जरूर होगी, जो इस मस्जिद में बैठा है इंशाल्लाह हश्र में जरूर मुलाकात होगी अल्लाह के फजल से। जिक्र जो कर रहे हैं अल्लाह ताला, बेशक से बाद आपके बाद मेरी आपकी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन हश्र में हमारी दोस्ती होगी अल्लाह के फजल से। और आज पक्की दोस्ती करके जाऊंगा आपके साथ, ऐसी दोस्ती जो कभी टूटे ना। आखिर में सब दोस्तियां टूट जाएंगी, सब रिश्ते फना हो जाएंगे, लेकिन आज आपके साथ वो रिश्ता कायम करके जाऊंगा इंशाल्लाह जो कभी टूटने वाला नहीं होगा। पक्की जारी करनी है मैंने आपके साथ, वो थोड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा ही नाम सुभान अल्लाह, इसको तो अंदाजा लगाया। चौथा नाम ये कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह खबीर और बसीर हैं, कादिर मुतलिक हैं। इतना पसंद फरमाया अल्लाह ने समझ में हो इन लोगों को, इतना प्यार लोग आया कि अपने खास मजलिस के अंदर, हदीस के लफ्ज हैं, मजलिस खास में। वो पता नहीं अल्लाह की क्या मजलिस खास होगी, अल्लाह की शान शान होगी मजलिस। उस मजलिस के अंदर अल्लाह पाक तफाखुर के साथ सुभान अल्लाह मेरा और आपका जिक्र फरमा रहे हैं, सुभान तस्का फरमा रहे हैं हमारा। पीछे रह की गया फिर, पीछे तो कुछ नहीं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या इनाम है, आप देखिए कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ने दिया है। मुझे बताएं आप, इतनी सी मेहनत पर, इतनी सी बात पर अल्लाह ने कितना बड़ा आम दे दिया। वजह उसकी यह है कि जो अमल आप कर रहे हैं, जो फेल आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है वाला जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह का जिक्र जो है बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसी मजमे पे एक और हदीस में याद आ रही, मैं आपको सुना दूं कि जैसे ये मजमा खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आसमानों से एक फरिश्ता आवाज मारेगा, और उसकी आवाज क्या होगी कि ऐ लोगो, ऐ अल्लाह का जिक्र करने वालों, ऐ मजमो, अल्लाह सुभान ताला ने तुम सबकी बख्शिश कर दी, तुम सबकी बख्शिश कर दी, बख्शिश हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आखिर इनाम कहते बख्शिश नहीं की सर, बल्कि क्या है कि जो गुनाह तुम्हारे साथ चिपटे हुए थे, मैं तो अपनी बात करूं ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम हेड टू टो गुनाहों में तत्पर था मैं, जब इस पे आया हजारों किस्म के पूरे गुनाह ही थे सारे जिस्म के ऊपर। आप तो खैर नेक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जरूरत तो पड़ती है ना नहाने की। कितने आदमी साफ हो फिर भी नहाना तो पड़ता है ना, कि यार चलो पसीने खत्म हो गए मैली हटेगा। तो चले आप तो नेक आदमी, फिर भी सुन लें आप कि कितनी अहम चीज थी। दूसरा इनाम बताया कि जितने भी गुना हम लेकर अपने साथ इस मस्जिद में दाखिल होकर इस मस्जिद में बैठे थे, तो फरिश्ता ऐलान करता है कि खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जितने गुनाह तुम आए थे लेकर वो गुनाह खत्म ही नहीं हुए, बल्कि उन सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। क्या उन्होंने तो माशाल्लाह हमारा तो ऐसा मामला बना दिया कि बस किससे खत्म हो गया। अल्लाह कैसे करे, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे भाइयों, अपने जहनों को हम सबसे पहले इस चीज पे डालें कि जब कंपेयर हो जाए मामला कि ये दुनिया है और इधर आखिरत आ रही है, किसको ड्रॉप करूं, किसको करेंगे, फौरन आंख बंद करके उसको खत्म कर दें। फिर कहते इसमें तो है ही कुछ नहीं, जहाई सबसे बड़ा धर्म, इसमें मुझे क्या मिलना, मिलना भी नहीं। अगर आखिरत को छोड़ के आपने दुनिया को लेने, तो उसमें बरकत ही कोई नहीं। उसका जितनी तादाद क्वांटिटी आप कितनी बढ़ा लें,
कुछ भी नहीं होगा, क्वालिटी चाहिए हमें सिर्फ। उसके बाद अगर 5 पाउंड मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बजाय 10,000 पाउंड के, वो 5 पाउंड इतने बाबरकत हो जाएंगे कि वो मिलियन भी ले आए उसके मुकाबले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। खनात आ जाएगी अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी 5 पाउंड से। लेकिन ये मिजाज बनाना पड़ता है, कहां बनेगा जब तक आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में नहीं बैठे। क्योंकि ये जो चीजें हैं देखिए कहां से शुरू हुई, सबसे पहले जो जमात बनी सबसे बड़े बुद्धू लोग थे। मैं कहता हूं जमाने ने ऐसे लोग कभी नहीं देखेंगे जो जिंदा बच्चियों को जमीन में दरगोल कर देते थे, अपनी बच्ची को, बच्ची रो रही है तो बाबा मैंने किया क्या है, कि कोई सोच सकता है आज किस दौर में कोई सोच सकता है एक जिंदा बच्ची को लेके आप खड़ा खोद रहे हैं और चीख रही है, मां को बुला रही है, बाप दोनों खड़े हैं, उसको दबाकर उसको मिट्टी उसको बगा रहे, जिंदा डाल रहे। वो कौम थी, उस कौम का मिजाज कैसा बना, कैसे बना? कोई किताब पढ़ी, कोई वाज आए, कोई कुछ हुआ, कुरान भी बाद में उतरा है, सुभान कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि उसके लिए नबी करीम की सोबत मुबारक उनको मिल गई। और सिर्फ इस गारंटी पे एक दफा ईमान के साथ जिसने नबी करीम का चेहरा ताबनाक देख लिया, वो दुनिया का वो इंसान बन गया कि ता क्यामत तक कोई भी आ जाए, गुदब को जितने भी आ जाए, उसकी मिट्टी पांव की निकली मिट्टी के बराबर ही निकल सकता। ये सोबत का रंग था, मिजाज बदल गया। तकरे बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो सबसे पहले अंदर के मिजाज को बदलना होगा ताकि हमें कीमत समझ आ जाए कि भाई ये दुनिया बेकार है हमारे लिए। जब उन लोगों के साथ आप सोबत रखेंगे, उनके साथ बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो जाए। अब इसके लिए ये तो है, मुझे वो शेख मिले यहां से तो मुझे 4,000 साल दूर मिले, माइल्स दूर थे, लेकिन बात समझ गया था कि मिलना सब कुछ इधर ही से है, आखिरत वहीं से मिलनी है। अब 4,000 माइल्स मिली चलना, कुछ भी नहीं था, कुर्बानी कुछ भी नहीं थी, सुभानअल्लाह। उसके जगह चीज मिल गई वो क्या, कि एहसास हो गया कि दुनिया कुछ नहीं, आखिरत बहुत बड़ी चीज है। नमाज मिल गई, सिजदे मिल गए, सुभानअल्लाह। और क्या चाहिए था? उस आवाज पे उठना आ गया जब हय्यु सलाह होती है, उस आवाज पे हर चीज छोड़ना आ गई जिस वक्त अल्लाह बुला रहा होता है। जानवर था इंसान, जानवर होता है, बागी होता है अल्लाह ताला का, कितना बड़ा बागी है इंसान कि अल्लाह हुक्म दे रहा है और वो खड़ा हुआ है और फिर मांगता उसी से, मुसीबत उसको सुना रहा है। ऐसा तो फिरौन भी नहीं करता था, उसने मुखालफत की तो मुखालफत करता था, सोचते सही फिरौन ने भी ये काम नहीं किया था। आज हम मुसलमान हो कैसे काम करते हैं? अल्लाह ने कहा ये ना देखो, ये हराम है, ये चीज हराम, इसको मत करो, ये मत सुनो, इसको मत देखो, बेहाई मक्त अख्तियार करो, ये हुक्म किसका है? मेरा है, आपका है, मौलाना का है, किस चीज का? अल्लाह का हुक्म है, रब करीम का हुक्म। जिसना जिसकी नाफरमानी का मियार ये है कि शैतान ने तो एक ही बात पे इनकार नहीं किया था, जवाब पेश किया था, दरगाह पारगाह कर दिया गया। 6 करोड़ जिसने सिजदे किए हो, 6 करोड़ साल इबादत की हो जिसने, फरिश्तों का जो टीचर हो जवाब देने पर, और मैं आप तो क्या है मुझे बताए? हमारी शान तो एक ही वजह से है कि हम उम्मत रसूल में हम बचे हुए हैं दोस्त, उसकी शेड में है। कब तक बचेंगे? आखिर ऐसा होगा कि आखिर तो आ जाएगी, मौत पकड़ लेगी। मेरी बात समझ रहे ना आप? मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक वो हकीकत है हाल बता रहा हूं जो मेरी जिंदगी में बीती है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा दिल करता है कि हर आदमी में एहसास पैदा हो जाए जैसे मेरे अंदर पैदा हो गया। अपनी जिंदगी को समझ, आर्टिफिशियल चीज नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम चीज होनी चाहिए। जन्नत में चले गए, चलो ठीक जन्नत में जा रहे हैं, आपको पता है जन्नत की बात भी सुन लें। आखिरी जो हमारा ठिकाना होगा ईमान वालों का इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कि जन्नत है ना, वहां जन्नत हमारा ये होगा, चलो भाई ठीक है माशाल्लाह अब आ गए। जन्नत तो ऐसी जगह है, सूरह वाकिफ थक पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, कितनी सूरत में अल्लाह पाक सूरह सजदे में क्या कहे, बस छोड़ दो इसकी क्या तारीफ की जाए, तुम समझ नहीं सकते किसे खत्म करो। तो ये आर्टिफिशियल नाम दिए सेब, वो सेब और है, ये सेब और है, वो औरतें और हैं, ये औरतें और, वो महल और है, ये महल और है, ये पानी और है, वो पानी और है, तो सिर्फ नाम दिए हैं। उस तक तो तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता, वहम भी नहीं जा सकता कि वो क्या सेब होगा, वो क्या हसीन औरतें होंगी, वो क्या महलात होंगी, वो क्या चीजें होंगी। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाया। वहां जाके कोई पछता सकता है आदमी? पछताएंगे आपको जन्नत में आप छोड़ दिया जाए कि तमन्ना बाकी रह जाएगी आपकी? कोई भी नहीं, यार आप क्या चाहिए? कुछ नहीं, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना जक, कुछ भी नहीं।
बेचारे जो नमाजी के आदमी में मजाक में कहता हूँ, तो जब जन्नत में जाएंगे यार नमाज का टाइम हो गया, नमाज खत्म भाई तुम क्या टाइम देखते हो, कहते नहीं नहीं यार हमारी नमाज खजा खरा रही, उनको आदत पड़ी है भाई जमात में जा जाकर नमाज पर फोन उठना, तो फिश्ते ठंडा करेंगे उसको, भाई ये यहाँ जमात नहीं होती ना नमाज होती है, खाओ पियो मजे करो कुलो बशो, कहेगा दूसरा यार कहीं खजाना करा दे नमाज हमारी, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आदत पड़ जाती है आदमी, तो आस्ता आस्ता वहां ब्रेक लगेंगे मजे आने वाले, आदतें वही पड़ी होंगी यार सीधे भागो नमाज अजानी किधर, इधर मस्जिद कहाँ है यार जा नमाज, जामा मस्जिद किधर है, चलिए यार नमाज पढ़ी, ऐसी आदत हो जाती है इंसान की नमाज पढ़ते, अल्लाह में ऐसा नमाजी बनाते हैं आमीन। तो भाई ये क्या कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माज बिन जोर के फरमा रहे हैं, गौर से सुने इस, ये और मेरे आने का मतलब मेन अब इस हदीस पे है, इस हदीस पर सरनामा बयान मेरा जो सुन रहे इस मजलिस को ये है, इस हदीस को गौर से सुनना और तवज्जो से सुनना, ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूं, असल मकसद मेरा ये है, बस ये है काम, क्या मैं ये चाहता हूं, ये तमन्ना लेकर आया हूं कि कोई आदमी आप में सब जो जन्नत में जाए, जो औरत मर्द अगर यहां औरतें भी सुन रही हैं, तो मेरे भाइयों मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जन्नत में जाके हमें पछताना नहीं चाहिए, वहां रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा, उस ये पैगाम आपको देने आया हूं, मजा क्या हुआ जन्नत में जाने के, वहां भी आदमी पछताएगा, वहां भी हाय हाय करे, यहां तो ठीक है जी चले, ओ ये मेरी कोठी होती यार देखो इसने कितना मकान बना लिया, ओ यार ये मेरी गाड़ी होती यार, ये तो चार दिन इसको आई हुई इसने देखो यार विरास खोल लिया, यहां तो यही करते रहते ना आदमी, यार इसकी दो गाड़ी होंगी, दो पाकिस्तान चले गए, वो यार देखो माशाल्लाह तो यार इतने मकान बनाया है, मैं तो उधर गया कुछ भी नहीं कर सका, मैं तो फलाम नहीं हुआ, ये है पछतावे यहाँ के, तो अगर जन्नत में ये पछता हुआ जनाब देखो यार तो माशाल्लाह इसने तो बड़ा इसका तो महल ऊंचा हो गया, कट्ठी नमाज पढ़ते सी कट्ठे जमात से जाते इन्ना महल बना लिया, वहां तो ये नहीं होना चाहिए, हजमात में जबरदस्ती अल्लाह ताला क्या करते हैं, लैसा यतहस्सर हो, अजीब बात कही उन्होंने, लैसा यतहस्सर हो अहल जन्ना, सुभान अल्लाह अजीब बात है कि जन्नत में जाने के बाद भी जन्नती जो होंगे वो अफसोस कर रहे होंगे, हाथ मल रहे होंगे, उनको भी अफसोस होगा। अब मैं चाहता हूं आज आपको मैसेज ये देने आया हूं कि हम वो इंसान बन जाए कि हमें कल जन्नत में अफसोस ना होगा, बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, नक्स सौदा करता हूं मैं तो आदमी से, ठीक है जी माशा, फायदा क्या है नमाजों का, की फायदा है जान दोस्तों, होते ही जागे ऐसी पछताना ही है, ये हदीस है, हदीस मौज में जोर कर रहे हैं, ये तहस्सलू अहल जन्ना, कि जन्नत में भी जाके अफसोस करेंगे वो और पछताएंगे जन्नत के अंदर जाकर भी। मैं आज आपको ऐसा गुर बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर आप मुझसे वो चीज ले लेते हैं आज इस वक्त, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस हदीस से कि आप जन्नत में पछताएंगे नहीं बल्कि और मजे हो जाएंगे। बताऊं आपका गुरु एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि मेरी मेहनत जाया ना जाए, आना जाए ना, मत ये असल मकसद मेरा ये हदीस थी, या कुछ तो फायदा दोस्तों, कुछ तो दे क्या हूं ब्रेडफोर्ड वालों को, इतनी दूर से आए इतनी खाली चला जाऊं उनको कुछ ना दू। आगे हदीस चलती है, पहले तो कह दिया कि अहले जन्नत भी जो है पछता रहे होंगे, देख रहे होंगे भाई मारे गए कुछ नहीं, किन को देख रहे पछताएंगे, वो क्या वजह है जिससे पछताएंगे, इल्ला साथा, एक लम्हा जो इस दुनिया में, एक लम्हे की बात करो, इल्ला साथा, एक लम्हा जिन्होंने गुजारा होगा इस तरीके से, किस तरीके से, अल्लाह लम यस्कुरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा, ये है जन्नत का खजाना, क्या स्टैंडर्ड जन्नत का देख लिया आपने, मुत्तकियो नमाजियो परहेजगारो हाजियो उमरा करने वालों सब पछताओगे, आलमो मुहद्दिसो सब पछताओगे, अल्लाह ने क्या स्टैंडर्ड रखा है जन्नत में ना पछताने का, कि वो स्टैंडर्ड अल्लाह ताला का कि तुम्हारी जिंदगी यहां ऐसे ही गुजरे कि एक लम्हा भी एक साथ भी ऐसी ना हो जिसमें तुम मुझे याद ना करो, बोलो सुबहान बताया मुझे कोई आदमी ये स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड जन्नत का है। हर आदमी पछताएगा, बड़े से बड़ा मुहद्दिस पछताएगा, बड़े से बड़ा मुफस्सिर कुरान पछताएगा, बड़े से बड़ा हर इंसान पछताएगा। वो भी पछताएगा जो अल्लाह का जिक्र करता था, वो भी पछताएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इतना जबरदस्त है कि एक लम्हा भी एक सांस भी ऐसा तेरा नाम गुजरा हो जिसमें मेरा प्यारा नाम ना तेरी वजूद से निकला हो। तेरा वजूद ही कायम अल्लाह के नाम से है, तुझे जरूरत कैसे हुई जो तेरा खालिक था तुमने उसको एक लम्हे के लिए कैसे भुला दिया। हाय ये है मेरा और आपका रिश्ता, मालिक का रिश्ता। हे भाइयो, हाँ डैम खाना आता है, चूजे खाने आते हैं, बटेरे खाने आते हैं, तो सब पता है हमें, हलाल कहां से मिलता है, हराम कहां से मिलता है। आखिरत का सोचो, क्या बर्दाश्त कर सकेंगे ये वक्त हमें? क्यों? हदीस में इसका बताया सीधा ये कि उसकी वजह ये होगी कि जिसने एक दफा अल्लाह का नाम लिया होगा तो उसके इनामात वो देख रहे होंगे जन्नत में, और जब वो शख्स वहां पहुंचा होगा तो फिर टकरे मार रहे होंगे लोग, हाय 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 ये मैंने क्या किया, जिंदगी कैसे बर्बाद कराया, इतना बड़ा मुकाम था सिर्फ एक दफा अल्लाह कहने का, इतना बड़ा दर्जा था, अल्लाह ने तो जबान दी थी, खोपड़ी दी थी, हाथ दिए थे, नाक दिए थे, और तेरे समझ में नहीं आई। अल्लज़ीना यस्कुनूना क़ियाम व क़ऊदुन अला जुनूबिहिम, तेरे समझ में कोई हदीस नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, कोई स्टैंडर्ड नहीं है अल्लाह ताला का। तो कितनी बड़ी बात है कि वहां भी रोना पीटना। तो मतलब क्या है इस हदीस का? मतलब ये हदीस हमें जगा रही है, जाग जाओ और वो फेल कर लोगे कल तुम्हें पछताना ना पड़े। दिस द मीनिंग ऑफ दैट। हदीस सुना लेंगे मतलब ये नहीं होता कि आपने हदीस सुन ली, वाह जी वाह उन्होंने हदीस सुना चले गए, निकलेंगे कैसे दरवाजे से आप? जब तक मैं आपसे इस हदीस में अमल नहीं करा लूंगा, इसी को दरवाजे से नहीं जाने दूंगा। निकल के दिखाएं मुझे आप, बताएं निकलते ये ना समझ में ताकत नहीं, जुड़े छुड़े सब जानता हूं। निकलने से कदम कुछ जवान आज ना मुकाबला दस से दस ना होना, फिर कटना उन्होंने जदों तक उन्हें इस लेवल तक नहीं ना पहुंचाना मैं, जेडी मैं हदीस तुम्हें दस अमल ना करा लेंगे मैं तुम्हें जान नहीं दिया। मैं वो तकीर करना नहीं आया, ना आवाज कराना है, ना तुम्हें खुश कराना है, मैं तो अल्लाह को राजी करने आया, मुझसे भी आपसे अल्लाह राजी हो जाए। ठीक है, पक्की बात हो गई। सुनो फिर मेरे भाई हो, ये कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, और अल्लाह ने उतनी आसान कर दिया। अल्लाह सुबहाना ताला ने जो अहकाम जारी किए हैं कुरान के अंदर, कोई हमारी तकलीफ के ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। भक्ति क्यों, डरते क्यों? मैंने तो कोई अमल कोई चीज तुम ऐसा नहीं दी कि जो तुम्हारे सोच से बाहर हो, तुम्हारी ताकत से बाहर हो। हकीकत मैं बताऊं आपके, ये भी एक ड्रामा है बड़ा जबरदस्त, आप कभी देख सकते हैं मरीजों में, हाय मर गया जी मेरे पे, ये सब ड्रामा है, कोई तकलीफ नहीं। जिस वक्त वो तकलीफ से बाहर हो जाएगा, ये मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने मुझसे ये तजर्बा कराया है, बिल्कुल डॉक्टर की सर्जरी में कराया है, अपने पर्सनल मेरे तजर्बा हुआ। जिस वक्त आदमी में तकलीफ वो आ जाए, वो लाजुकल्लफर से बाहर हो गया, उसके बर्दाश्त से बाहर है, वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। जब तक वो तकलीफ में है, उसको वही तकलीफ मिली है, तो बकवास कर रहा है, बर्दाश्त कर सकता है। तभी तो गए नमाज मत छोड़ो जब तक होश तुम्हारे अंदर है, यह बात समझो ना। वो जो पेट में दर्द कर रहे हैं ना, वो नमाज छोड़ने के लिए कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, हालांकि वो नमाज पढ़ सकता है। कोई तकलीफ ऐसी नहीं है जिसमें आप अल्लाह को भूल जाए, उसकी नमाज को भूल जाए, वरना अल्लाह कभी ना कहते कि तुम इस हालत में नमाज को छोड़ दो। समझ गए मेरा? हाँ, कभी नमाज को छोड़ना ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। ओ बर गया थे, ओ लुट गया थे, फना हो गई, बड़ी पीड़ होती बेच रहा है, कुछ नहीं, नमाज पढ़ो, बंदे का पुत्र बन, बर्दाश्त कर सकने तुम, हिम्मत कर, मर्द है, अल्लाह को याद कर, अल्लाह जुलम नहीं करता। सुभान अल्लाह, हाँ तकलीफ मानते हैं, तकलीफ होती है, हाथ कट जाए तकलीफ होती है, सब कुछ होती है, लेकिन क्या है, ये वो तकलीफ नहीं जो तेरी इस्ताद से बाहर हो जाए। रब और तेरा ताल्लुक ही है, महिला ये की है कि दूंगा तकलीफ तो ऐसी दूंगा, तू बर्दाश्त भी करेगा और तुझे रिवॉर्ड भी दूंगा, सवाब भी दूंगा। सुभान अल्लाह, खाली नहीं छोड़ूंगा। तो लोग तो कहते हैं आए तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, आएगा मेरा इनाम तो मिलेगा ना आखिरत को। वो तो वो इंसान है जिसके सर में दर्द भी नहीं करते अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करते, जिनको महबूब करते हैं, तो माइग्रेन में रहते हैं बेचारे हर वक्त। अब आपको क्या पता कि मैं कितनी बीमारियों के सामने आपके सामने बैठा हूं,
क्योंकि मेरे डॉक्टर का फोन करके पूछें ये फला फला आदमी जी इसमें कोई बीमारी है तो कहिए कि ठहर जाए प्रिंट करनी पड़ेंगी बीमारी है और गोलियां लग रहा हूं आपको बीमार नहीं क्यों कि अल्लाह का नाम लेता हूं ऐसी तैसी बीमारी अपना बिस्तर उठाए चल पड़ते हैं अलहमदा जहां जाने अल्लाह का जिक्र करें सवाब आपको बता दिया मैंने अगले इतवार फिर आ जाऊंगा इंशाल्लाह किसी मस्जिद में मुफ्त की तो लॉटरी लगी है भाई ये तो सेल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कि हाथ पांव हिला लेता हूं तो उम्र नहीं देखता कि मेरी उम्र कितनी है उम्र जवानी है वो सब बकवास है डेट ऑफ बर्थ मैंने बंद करके रख दी अपनी फिर मुझसे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू आई एम नॉट ओल्ड आई एम यंग नो कैलकुलेशन एट ऑल अजमाना तो अजमा लो जब ओल्ड होऊंगा उस वक्त ओल्ड समझूंगा जब अल्लाह सुभाना ताला मुझे बुला लेंगे बस फिर खत्म जब तक अल्लाह ने रखा है इस वजूद के साथ चल सकता हूं हाथ लाया पांव लाया सब ठीक है भगवान क्यों आखरत कमाओ और आला दर्जे की आखरत कमाओ अब मैं बैठ के तहज्जुद पढ़ लेता कुरान पढ़ लेता तस्वीर कर लेता मुझे ये मिलती चीज कितने लोग सही हो गए कितने लोगों को क्या मिल जाएगा और मेरा आना जाना इस सवाब मुझे मिलता जब मेरी ताकत थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल पड़ा पहुंच गया आपके पास अब चला भी जाऊंगा वापस अल्लाह के फजल से उसका करें ये जिंदगी का स्टाइल बनाए जमकर ना बैठ जाए बस आए डकारे वाले तीन चार बस नमाज पढ़ी फिर घर जाके बैठ गए फिर लस्सी का गिलास पी लिए फिर खाना खा हिलो किसी ऐसे आदमी के साथ दोस्ती लगाओ जिसके साथ चलना फिरना तुम्हें आ जाए सुभान जमने के लिए नहीं हम आए हम दुनिया के अंदर ठिकने के लिए नहीं आए एक ही जगह बैठ बैठ के घर के बेड को खराब कर देते हैं तोड़ देते हैं एक कुर्सी बैठ बैठ के कुर्सी ही टूट जाती है बुढ़े हो गई कोई बुढ़ा नहीं कोई बुरा नहीं हो उठो काम कर वक्त है काम करने बुढ़ापे में तो बहुत काम करने का वक्त है कभी ना बुढ़ा समझना अपने आप तो मेरे भाई अब मैं आपको गुर बताता हूं जहां हमें जन्नत में पछताना पड़े वो क्या चीज है क्या तरीका है पूछे कितना जिक्र करते हैं 10,000 कुछ भी नहीं फिर भी पछताएंगे कितना करते हैं 10,00,000 फिर भी पछताएंगे कितना आप जिक्र करते हैं हस्तानवी रहमतुल्लाह के खलीफा थे मजूब रहमतुल्लाह बड़े आला दर्जे के आदमी थे आशिक थे उनके बल्कि शायद इतने बड़े आशिक थे कि सारे रश्क करते थे उनके इश्क पर जिनको अपने शेख के साथ था हस्तानी रहमतुल्लाह के साथ बेइंतहा बहुत नज़में लिखी उनके पर बहुत आशिकजार और बहुत बड़े ऑफिसर थे कलेक्टर थे इंडिया के इतने मसरूफ आदमी उनका जिक्र क्या था सुभान अल्लाह 40,000 इसमें जात करते थे वो एक दिन के अंदर इतना मानो 40,000 10,000 कहेंगे लेकिन पछताना उन्होंने भी अगर उस स्टैंड पे नहीं किया क्या कि हर सांस हर लम्हा कहां बनता है मैं बताऊं आपको पहले लम्हे की बात है ना इल्ला साथ एक साथ जिसने छोड़ी ये दिल है ना मेरे भाइयों अब सुने मेरी बात ये दिल जो है ना ये बड़ी काम की चीज है इसे हार्ट फेल और हार्ट चलने के लिए नहीं है ये डॉक्टरों की आवाज गा नहीं है स्कैन करके देखें चल रहा है नहीं चल रहा ये तो बड़ी ऊंची चीज अल्लाह ने बनाई है इसकी हकीकत को समझे आप ये तो मशीन लग गई है अल्लाह पाक ने बड़ी जबरदस्त पूरे वजूद को जो खासियत दिल में दी है किसी हमारे जिस्म के किसी हिस्से के अंदर नहीं है अभी मुझे एक बात याद आ रही है मैं आपको मिसाल दूंगा कि डच बहुत बड़ा साइकोटिस्ट था नफ्सियात माहिर नफ्सियात उसका मैं आपको एक माकूला पेश करूंगा फिर आप समझेंगे बात तो क्या अल्लाह ने हमें स्टैंडर्ड दिया कि कोई साथ तुम्हारी ना गुजरे तो अल्लाह हम जिक्र कैसे करें 10,000 करते हैं 15 तस्वीर करते हैं छोड़ो तस्वीर नहीं काम होना जन्नत जरा स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट है तो किससे जिक्र करें तो मैं दिल से जिक्र करूं किससे करना है हाँ दिल यार ले हथकार ले ये अल्लाह ने जो वजूद दिया है दिल जो दिया है हमें ये दिल दिया इसलिए बयात कि तू अपने रब को इससे याद कर और जब दिल अल्लाह अल्लाह करने लगता है अल्लज़ीना यस्करून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन मुझे बताएं कोई माई के लाल सोते में जिक्र कर सकते हैं तस्वीर होती है उसके पास तो अल्लाह कहता है कर नहीं बताएं जब आप मैं बात कर रहे हैं जिक्र कर सकते हैं तिजारत कर रहे हैं जिक्र कर सकते हैं खाना खाना जिक्र कर सकते हैं बाज़ बुजुर्ग तो ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने खाना छोड़ दिया सत्तू भाँप देते काम फिर भी ना बना क्यों कि दिल दिल अल्लाह का जिक्र दिल अल्लाह का जिक्र करे दिल अल्लाह का जिक्र करे तब इंसान उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है कौन सा कि जहां उसको पछताना नहीं पड़ता हर लम्हे जैसे आपका दिल चलता रहेगा अल्लाह 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 सुभान अल्लाह इसको कहते हैं कब जारी हो जाना करेंगे ये जिक्र, सीखेंगे ये सीखने से आता है, सीखने से आता है। आज मैं आपको ये जिक्र सिखा के जा रहा हूं, वादा आपने करना होगा तो आपने इसको करना होगा, करते हैं वादा। बहुत आसान, मैंने आपको बताया जितना कीमती चीज होती है अल्लाह ने बहुत आसान की हुई है, याद रखिए। हवा कितनी कीमती चीज है, वो खरीदनी पड़ती है आपको, ले जाए जितनी लेनी है अल्लाह ने छुट्टी कर दी। पानी कितनी कीमती चीज है, बारिश टपकाते ही रहते हैं अल्लाह आसमान से, छतरी लिए फिरते रहते हैं, कीमती चीज है। जितनी कीमती चीज होगी अल्लाह पाक ने उसको बड़ी बहुतात से पेश किया, तो ये अल्लाह का जिक्र से बड़ी कोई कीमती चीज ही नहीं है, तो ये सबसे ही ज्यादा आसान है, सबसे ही ज्यादा आसान है। बस हम तवज्जो नहीं देते ना चीज के लिए, हमने कोशिश ही नहीं की कभी समझने की, बातों दुनिया के पीछे लगे हजार सब। तो भाई ये अल्लाह का जिक्र सीखे, जो सीखना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं अभी सिखा देता हूं, लेकिन बहुत ही मौत पर बड़ा बड़ा कीमती जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सदियों से ये नक्शबंदी के सीनों के अंदर आ रहा है और पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी किसी अल्लाह वाले ने जिक्र सिखाया है, जो हजरात सीखना चाहते हैं सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबको जिक्र सिखाता हूँ, ठीक है। तो जिक्र का तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन जिक्र से पहले एक काम हमने करना है, सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है हमारी, न्यू लाइफ आ रही है, याद रख लेना आज से आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, पुराने गुनाह सारे खत्म हो जाएंगे, पिछला हिसाब खत्म हो जाएगा, आपकी चादरें साफ हो जाएंगी, कोई आपका हिसाब किताब नहीं होगा आज इस वक्त तक, मेरी बातें याद रख लेना, बिल्कुल साफ होंगे आप, क्लीन। पहले आपको साफ किया जाएगा, फिर साफ करने के बाद आपके कल्ब को जारी किया जाएगा, आप यहां से निकलेंगे अल्लाह अल्लाह करता जाएगा आपका दिल। देना अल्लाह का काम है और संभालना आपका काम है दोस्तों। यहां तक आपको अल्लाह ने पहुंचा दिया, हम ना जाने क्या हाशिर होता हमारा कब्र के अंदर, जान हमारी कैसे निकलती, पूछें किसी मुर्दे से कि उसको किस तरह जान निकालते हैं ये फरिश्ते आने के बाद, क्या क्या हाल होता है, कितना कीमती है। इस वक्त साफ हो गए तो हमारी जान कैसे निकलेगी, बिल्कुल पाक साफ, खुशबुओं के खिलाफ आएंगे और फरिश्ते मुबारक देते हुए आपको जन्नत फिरदौस में ले जाएंगे, गुनाह जो नहीं अल्लाह माफ जो करती है। इन बातों पे यकीन करें पक्का, ये कुरान हदीस मैं आपको सुना रहा हूं, मौलाना साहब गवाह इस चीज से, पूछे मैं बाद हदीस सुना देंगे आपको। यकीन इतने कमजोर हमारे हो गए कि हमारा दिल मानते नहीं बातों को, नहीं यार किस तरह मेरे गुनाह माफ होंगे, नहीं आए तो बिल्कुल खाफ खत्म हो जाएंगे आपके। और इस चीज को अगर कायम रखना चाहते हैं तो आज के बाद आपको गुनाह करना नहीं होगा, फिर ये तो फिर बात है ना आपकी मर्जी। फिर अगर इसी की जिंदगी को चलाना चाहते हैं आप क्यामत तक और मौत तक, तो आज अल्लाह ने तो आपको कर दिया इस काबिल, हर आदमी अल्लाह का वली बन के निकलेगा यहां से, गारंटीड कहता हूं, ये रोजे क्यामत में आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वलायत को संभाल लिया, अल्लाह के इस तोहफे को संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिया अगर, तो क्यामत तक ही चलेगा आपके साथ तोहफा। अगर आपने इस कीमती चीज को बिगाड़ दिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बहुत कीमती मौका हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, किस चीज से खत्म होगा। एक बहुत गुनाहगार शख्स हदीस में आया, शख्स आगे कहता है अल्लाह के नबी सुन मर गया, तबाह 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 तबाह, मैं क्या हुआ, इतने गुनाह मैं क्या कहूं, बहुत गुनाह, कितने गुनाह, जमीन आसमान बढ़ जाए तेरे गुनाह से, इतना गुनाह समंदर बढ़ जाए, इतना गुनाह यार सुना, बहुत गुनाह, मैं क्या कहूं, बड़ा सख्त परेशान। आप सब सुन खाना किधर आया, कहते पढ़ इस्तिग़फ़ार, आपने कलमा पढ़ाया, फिर पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा, जिंदगी तेरी खत्म हो गई। ये है कमाल अल्लाह ताला की रहमत का, सुभानअल्लाह कैसे साफ करते हैं। वो इतना छलांग मारता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, साहबी बन गया हमने, तो ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं। गुनाह क्यों देखते हैं, अल्लाह की रहमत को देखें आप, अल्लाह की रहमत को देखें। आज के बाद वो काम ना करें जो अल्लाह ने जिस चीज को मना किया है, तो बिल्कुल बंद हो जाए चीज। दिल कहेगा आपको लेकिन मेरी बात चाहते हैं, हम तो वली बन चुके हैं, हम ये काम नहीं करना चाहिए, ये मुखालफत है, नहीं करूंगा। इस नफ्स को कंट्रोल कर गए आप तो बहुत कुछ लेके चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद फिर आप टम करके फिर गाने बाने और फिर चल पड़े, सारी कीमती मिट्टी मिला देंगे आप पूरी महफिल। अब ये आपकी मर्जी संभालें, मैं आपको अलहमदा उस तक लेके जाता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, सबसे बड़े समझ से मैं गुनाहगार हूं, सियाकार बदकार हूं, मैं तो जरूर करूंगा ये, आप तो नहीं कहा दें लेकिन आप भी कर लें, मेरे लिए माफी हो जाएगी, आपके दर्जे बुलंद हो जाएंगे। वो क्या है, अल्लाह के हुजूर सबसे पहले हम तौबा करें, इज्तमाई तौबा करेंगे भाई, जो करना चाहता हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता लगे। सुभानअल्लाह, पहले तोबा होगी, तोबा के बाद क्लीन चिट हो जाएगी हमारी, साफ हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको जिक्र कल्ब भी बताऊंगा, उस जिक्र कल्ब भी ये इस तरह किया जाता है, उसकी आपको इजाजत दूंगा और फिर आप उसको अपनी जिंदगी में लें। करने का क्या तरीका, बहुत आसान, वेरी इजी, बहुत आसान। उसके लिए कोई मुशक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी होगी, कोई आपका काम नहीं रुकेगा, कोई दुकान नहीं रुकेगी, कोई कारोबार नहीं रुकेगा, बस एक मशीन चलनी है अंदर से, चलती रहेगी। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। बेकार मशीन थी अंदर की, वो आप चलना शुरू हो जाएगी, अल्लाह 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 शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, शुरू करें काम, जिस काम के लिए मैं आया था, करते शुरू। चलें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तौबा। अपने अपने दिल में नियतें कर ले, अल्लाह ताला जो कुछ भी मैंने गुनाह किए हैं, तूने कर्म किया है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अपना कर्म फरमा, मैं इंशाल्लाह तौबा पक्की करता हूँ। करते हैं सब भाई ये नियत, घबराते नहीं यार, कल की हो गया तो फिर कर लेंगे, बिल्कुल ना घबराना, शैतान का धोखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका साफ करें, कल कल की देखी जाएगी अल्लाह, फिर कल को भी सब कोई इंतजाम कर देंगे इंशाल्लाह। आज पाप साफ होकर निकल रहे हैं हम यहाँ से, चलिए पढ़े, मैं कल में पढ़ता हूँ, मेरे पीछे कलमात पर اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه واتوب اليه واتوب اليه امين ما شاء الله ختم اتنی تھوڑی سی بات پہ اللہ سب گناہ بخش دی اللہ سبحان اللہ سبحان ختم اللہ کیا اللہ رحم کو مات انسان کتنا کرم یعنی بھول جاؤ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ جو اس کی گناہ ہے نا اس زمین سے کہہ دو کہ زمین بھول جائے اس جگہ کو کہہ دو وہ جگہ بھول جائے اس فلاں انسان کو کہہ دو اس کے گناہ بھول جائے لیکن ایک گناہ نہیں گیا ابھی وہ یاد رکھیں حقوق والے گناہ اللہ نے اپنے گناہ معاف کیے ہیں حقوق والے گناہ کون سے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے کسی کا مال کھایا ہوا ہے کسی کی زیادتی معافی مانگنا اس سے بس خود کسی زیادتی ہو جاتی ہے نا آدمی کی بہن بھائی پھوپھی چاچا نانا معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ نہیں معاف یہ تو آپ اس سے معافی نہیں مانگنی پڑی باقی اپنے اللہ نے سارے معاف کر اللہ نے اپنے حساب برابر کر دیا اور کتنے ہم نے ظلم کیے ہیں یار کس سے کیا ہوگا جس سے لیے اسے کہتے ہیں یار معاف کر دینا بیوی ہوئی بچی ہوئی کہتے ہیں یار معاف مانگ لیں بس آپ نے معافی مانگنی ہے قصہ ختم اللہ تعالیٰ کہے ٹھیک ہے تم نے معافی مانگ لی کوئی آپ کے اپوش میں نہیں ہے آدمی اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کر دیں اس کے لیے صدقہ دے دیں اس کے لیے دعا پڑھ لوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ قرض دینا تھا اس کو مجھے مل نہیں رہا میں نے فلاں کرنا تھا تو میں اس کے لیے اتنا نمازوں کا ثواب دیتا ہوں اس کا تسبیح کا ثواب دیتا ہوں درود کا ثواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے وقت اب قلبی ذکر قلبی ذکر دوستو یہ ہے کہ دل کے اللہ نے ہمیں دل دیا ہے لیفٹ سائڈ دو انگل نیچے دیکھ رہے ہیں توجہ کریں دل ہے ہمارا اس دل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے آنکھ بند کر لینی ہے اور آنکھ بند کر کے بالکل جیسے بیٹھنا ویسے بیٹھ کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے زبان کو نہیں ہلانا بالکل نہیں ہلانا یعنی آواز نہیں نکالنی بالکل اور دل کی طرف توجہ فرما کر دل کے اندر آہستہ آہستہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہم نے کہنا ہے اللہ 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 زبان سے نہیں دل کی زبان سے انشاءاللہ جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے صبح اور شام اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر قلبی اس کا ثواب اتنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک ساتھ جو یہ ذکر کرتا ہے ایک ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں ون مومنٹ جو یہ ذکر کرتا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے فضائل المعارف کی لکھی حدیث 70 سال کی عبادت سے اتنا بڑا یہ ذکر ہے تو اس کا ٹائم فکس کر لیں آپ فجر کے بعد بیٹھ جائیں 10 منٹ 15 منٹ نہاتے ہیں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے اس کو مراقبہ کرتے ہیں دل کی طرف سوچنا شروع کریں اور اللہ اللہ بس وہ دل آپ کو خوش چلنا شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ اتنا کام آپ کا اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر بس ختم الحمد للہ صبح کریں اور شام کریں چلتے پھرتے ہر وقت دل پہ دھیان رکھیں جیسے دل آپ کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے ایک منٹ بھی دھیان کو اتنا پکا کر لیں اس مراقبے کو اتنا پکا کر لیں سبق کہ آپ کا دھیان ہی کدھر ہونا چاہیے ہر وقت آپ بس یہی خیال ہو اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے دل میرے دل اللہ کر رہے بیٹھے ہیں، میرے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ شاء پریکٹس ہو جائے گی، دل آپ کا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ پتہ محسوس کرنے لگیں گے آپ الحمد للہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور جتنا اس پہ آپ محنت کریں گے اتنی جلد ہی آپ کو جواب دے گا دل اس کا. باقی یہاں تک تو میں لے آیا، اب آگے جس کی ڈسکرپشن کی کیا کیا نور آتا ہے، کیا کیا مقامات اس میں الحمد للہ، اس کے لیے میرا ویب سائٹ ہے، کسی ساتھی سے لے لیں. اب صرف مجھے میسج لکھیں، جو بھی اس میں سلسلے پوچھیں گے میں اسی وقت آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا انشاءاللہ جو بھی آپ. ایک چیز اب ایک سن لیں اس میں خدشہ، جب آدمی ذکر کرتا ہے شیطان کی موت ہے سب سے بڑی. شیطان کسی چیز سے تباہ نہیں ہوتا ہے، ذکر سے تباہ ہوتا ہے، ذکر قلبی سے تباہ ہو جاتا ہے. تو اب پہلا وار کرے گا، جیسے آپ بیٹھے نا ذکر قلبی میں بیٹھے، آنکھ بند کی نا، وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دے. وہ دکان چلا رہا ہے، بیوی زیادہ رہی، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کہ بس یہ ذکر کرتا میں ہے تو بس پاگل ہے، کوئی ذکر ہے کتنے پاس ہے تو میں تیرا گلا کر رہا ہوں. وہ آدمی کہ یار میرا ذکر صحیح نہیں ہے، وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں. کبھی نہ کرنا ایسی بات، یہ شیطان چکر چلا رہا ہے آپ، شیطان کا دل سے کوئی تعلق نہیں، پورا زور لگا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں. اس کا علاج بتاتا ہوں آپ، جب آپ کو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، جو بھی ہیں، آپ اپنے دھیان سے اللہ اللہ کرتے رہیں، آنے جو بھی خیال آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ کو 101% پورا ثواب پہنچے، پورا ثواب پہنچ رہا ہے، بلکہ زیادہ پہنچ رہا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں. اس کی مثال میں اکثر ایک دیتا ہوں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، آتے ابھی کھانا آئے گا، بہترین چکن بریانی سب کھائے جا رہے ہیں، کتنے خیال چھوڑ دیں، پھر چڑھ دے گا بندہ، کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں کہ اندر جا رہا ہے نا مزہ، جا رہا نہیں جا رہا. اسی طرح میرے بھائی اندر کام کر رہے کھانا، جب اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں تو اندر جا رہا ہے، وہ فائدہ پہنچا رہا ہے آپ کو، اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ بالکل نہ چھوڑیں. تو آہستہ آہستہ خود خیالات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، خود ختم شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. ترک نہ کرنا اس ذکر کو، چھوڑنا نہیں اس ذکر کو. آنکھ بند کے میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں ذکر کے الحمد للہ سلسلے سے محتبر ہیں. جیسے آپ نے ماشاء اللہ توبہ کی ہے، اس توبہ کے بعد سارے کے سارے نقش بندی سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. روحانی طور پہ آپ کا جسم، آپ کا سب چیز روحانی سلسلے سے آپ کا تعلق بن گیا ہے اللہ کے فضل سے. گھر بیٹھے مل گیا آپ کو، گھر بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چلے گئے آپ. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. نہ کوئی محنت، ہم نے تو اتنی محنتیں کی ہیں یہاں سے، آپ تھے سبحان اللہ 40 سال جو ایک سے جو ملک ہم نے پھینکے اور جگہ ہیں، اب اس کا کیا حساب میں آپ کو دوں؟ تب جا کے اللہ کا نام ملے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، گھر کے اندر ہی پلیٹ فارم کے اندر گرم مسجد کے اندر اللہ نے آپ کو بٹھا کے اللہ کا نام دے. اپنی اپنی قسمت اس میں کیا ہے، اپنی اپنی قسمت الحمد للہ. ضائع مت کرنا اس کو، کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی. الحمد للہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے، اور اس کو جتنا کریں گے اتنا ہی الحمد للہ اس کے بہت فضائل ہیں. کبھی زندگی تو اس کے فضائل آپ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس پہ آپ کو سمجھ آئے گی ساری بات. تیار ہیں ذکر کے لیے؟